हम इन दिनों में प्रेतुकाम की सीरीज में है, मुझे नहीं मालूम कब तक आगे बढ़ेंगे। बीच में जरूर मैं कुछ चेंज भी करूंगा, कुछ और विषय भी बीच में हम लेंगे, ताकि पिता परमेश्वर को महिमा में और हम भी प्रभु परमेश्वर के वचन में और पढ़ते चले जाए, क्योंकि काफी समय से प्रेतुकाम चल रहा है। बहुत अच्छी पुस्तक है, मैंने जल्दी जल्दी लेकर आगे बढ़ा हूँ ताकि हम धीरे धीरे कुछ बातों को सीख सकें। अगर हम विस्तार से जाते तो पूरा साल इस पुस्तक पर जा सकते थे, बैठ सकते थे, पर फिर भी परमेश्वर की सहायता से हम इन वचनों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सो हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पिछले दिनों में आपको याद है हमने पौलुस के, शाउल के जीवन के परिवर्तन के बारे में देखा था और किस प्रकार से प्रभु ने अपने सनातन योजना में उसको चुन लिया। आपके पास जो मैसेज भेजा गया है उसमें प्रेतकाम उसका 9 अध्याय 32 पद से 10 अध्याय 33 पद तक के बारे में लिखा है। हम देखेंगे कहाँ तक आज जा पाएंगे। और 9 अध्याय के 31 पद तक हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस का परिवर्तन होता है, किस प्रकार से पौलुस को यरूशलेम कलीसिया में से जाता है। परिवर्तन के बाद वो 3 साल चला गया, अलग चला गया। हमने पिछली बार भी देखा गलती हुई का अध्याय 17-18-19 पद में उसका वर्णन है। 3 साल बाद फिर वो यरूशलेम वापिस आता है और तब यरूशलेम की कलीसिया में जुड़ता है। और कलीसिया में जुड़ने के बाद बरनबास है जो उसकी मदद करता है। बरनबास को इसीलिए सन ऑफ इनकरेजमेंट कहा गया क्योंकि उसने सदैव लोगों की सहायता की और उनको बढ़ाया है। ये बहुत ही अच्छा उसका जीवन का आदर्श था और वही था जिसने पौलुस को यरूशलेम में भी कलीसिया में जुड़वाया है। जबकि कलीसिया उसको लेने के लिए सहमत नहीं थी, डर रहे थे, उस पर विश्वास नहीं करते थे, पर प्रभु का धन्यवाद हो और तब वो कलीसिया में रह करके उसने कार्य किया है। और तब हम देखते हैं कलीसिया किस रीति से लिखा हुआ है 31 पद में, अतः सारे यहूदिया गलील और सामरिया की कलीसिया को शांति मिली पौलुस के कारण और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय में चलती और तथा पवित्र आत्मा में बढ़ती गई। क्योंकि इससे पहले कलीसिया को बहुत ज्यादा सतावनी का सामना करना पड़ा था। आज हम आगे बढ़ेंगे, 32 पद से लेकर के आगे जाएंगे। अब 3 लोगों के जीवन के बारे में अगर हम कहें तो आगे जो है पत्रस द्वारा उसकी सेवकाई है। बीच में पौलुस को देखते हैं लेकिन अब फिर पुनः पत्रस को हम देखते हैं, पत्रस के द्वारा उसकी सेवकाई है। और ये 11 अध्याय 18 तक हम पत्रस को देखने पाएंगे। तो पत्रस प्रेतो 1 अध्याय से लेकर के 11 अध्याय के 18 पद तक हम पत्रस को देखते हैं। बीच में पौलुस आता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर पत्रस हट जाता है और तब फिर पौलुस की सेवा जो आरंभ होती है। और तब 11 अध्याय के 18 पद से लेकर के 28 अध्याय के 31 पद तक जो आखिरी अध्याय आखिरी पद है वहां पर हम पौलुस को देखते हैं, पौलुस की सेवकाई को देखते हैं। लेकिन 9 अध्याय के 32 से 35 पद तक एनियास है, एनियास की चंगाई है, इसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। और दूसरा है जो 9 अध्याय के 36 पद से लेकर 43 पद तक तबीता का जलाया जाना है, तबीता के बारे में हम कुछ देखेंगे। और फिर उसके बाद 10 अध्याय के 1 पद से लेकर 11 अध्याय के 18 पद तक हम कुरनेस के उसके परिवार को देखते हैं, किस प्रकार से उसके परिवार का परिवर्तन है। तो 32 से 35 तक अनियास है और ये मैं पढ़ूंगा और कुछ बातों को देखना चाहेंगे। पत्रस को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, क्या कारण है, किस रीति से परमेश्वर पत्रस को इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है फिर ऐसा हुआ कि पत्रस उस संपूर्ण क्षेत्र में यात्रा करता हुआ लुदा के पवित्र लोगों के पास पहुंचा। वहां उसे लकवी का मारा हुआ अनियास नामक एक व्यक्ति मिला जो 8 वर्ष से रोग सहायता पर पड़ा हुआ था। 8 वर्ष से ये इस बीमारी में पड़ा होता है। पत्रस ने कहा अनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिस्तर ठीक कर। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। वो लुदा तथा शारोन के सभी रहने वालों वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। अब ये आश्चर्य का है, इसका ज्यादा वर्णन नहीं है, इस व्यक्ति का ज्यादा वर्णन नहीं है, पर एक चीज है कि एक व्यक्ति है जो बीमार है और रोगी है, 8 साल से अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने पत्रस को इस्तेमाल किया है कि पत्रस के द्वारा उस व्यक्ति की चंगाई हुई है। चंगाई पाप नहीं है, लेकिन चंगाई के सिद्धांत को हमें समझना है। प्रेतों के समय परमेश्वर ने चंगाई की इस तरह से दिया था कि लोग उस प्रकार से चंगाई करते थे, लेकिन आगे चल करके हम देखते हैं इसी को बाद में किस प्रकार से समझाया गया है। और अब परमेश्वर ने कलीसिया के प्राचीनों के हाथों में दिया गया है ताकि अगर कोई बीमार होता है, कोई रोगी होता है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया जाए और वो उसके लिए प्रार्थना करें, 3 बल से प्रार्थना करें और रोगी अगर उसने पाप किए तो भी क्षमा हो जाएगी और वो चंगा हो जाएगा। याकूब उसके 5 अध्याय में और हम 15 पद से आगे बहुत ही स्पष्ट रूप से पाते हैं। कई लोग चंगाई को तरह तरह से लेते हैं, पर मैं उस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। पर एक बात यह है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 35 पद, तब लुद्दा तथा शारोन के सभी रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। अगर वो चंगाई के द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से जाने, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह की ओर फिर रहे हैं, संसार से फिर कर यीशु की ओर आ रहे हैं, तो वो आशीष का कारण, महिमा का कारण है। हमारी हर एक सेवाएं, चाहे प्रार्थना की है, चाहे वचन की है, चाहे चंगाई की है, चाहे किसी चीज की सेवा, हर सेवा के द्वारा प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए और उस सेवा के द्वारा लोग प्रभु की ओर जुड़ने चाहिए, प्रभु की ओर फिरने चाहिए। जब प्रभु की ओर फिरने की बात होती है तो मन फिराने से मतलब होता है, पापों से क्षमा की से होता है, एक नए जीवन को प्राप्त करने से होता है। केवल ये नहीं कि हमने हम चर्च में जाने लगे और चर्च में जाने लगे और हम फिर गए, ये नहीं, लेकिन हमारे जीवन परिवर्तन है। अब हम उन पुराने चीजों को छोड़ेंगे जो संसार की हैं और पहले इसकी रीति विधियों को छोड़ करके हम वो नहीं करेंगे जो प्रभु का वचन नहीं कहता। सो कई बार हम प्रभु में आने के बाद भी पुराने रीति विधियों को बांधे रहते हैं और उसको बाइबल के साथ जोड़ देते हैं, वचन के साथ जोड़। अब जैसे एक उदाहरण के लिए, शादी समय हल्दी लगा और बहुत सारे लोग हल्दी को बाइबल के अनुसार कैसे जोड़ते हैं, एस्तर ने भी तो हल्दी लगाई थी, लेकिन एस्तर ने हल्दी कुछ और कारण से लगाई थी। एस्तर का हल्दी या सुंदर होने का तरीका था, लेकिन 3 दिन उसने उपवास किया था। क्या आप 3 दिन उपवास करते हैं? अब उसको उन्होंने हमने चेंज कर दिया पूर्व रीति से, और वो गलत है। हमें परमेश्वर के सिद्धांतों को परमेश्वर के तरीके से चलना है। प्रभु सहायता करे। छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ गया, मैंने दे दिया, लेकिन ध्यान रखिए, बाद में किसी बात हो तो पूछ सकते हैं बाद में। अब यहाँ पर तो यहाँ चंगाई, दूसरी चंगाई है, याफा में तबीता अर्थात दोरकस नामक शिष्य रहती थी। ये स्त्री निरंतर भले भले कार्य तथा दान दिया करती थी। उन दिन ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी, उनका ऊपर घर है, अटारी जो होता है वो उपरौटी कोठरी होती है, और कहा जाता है कि अटारी वो स्थान होता है जहाँ पर अधिक लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे हम प्रेरितों का 12 अध्याय में आ जाएंगे, अटारी वो स्थान था जब मरियम के घर में लोग प्रार्थना करते और पतरस जब बंदी गृह में था, जेल में था, तो वो बड़ा एक कमरा होता था, उस कमरे में कई लोग बैठ सकते थे, कई लोग आ सकते थे। जब कलीसियाएं आरंभ हुई थी तो कलीसियाएं इसी तरह से आरंभ हुई थी, घर घर में मिलती थी और वो घर छोटे नहीं थे, बड़े होते थे, जिसमें 30, 40, 50, 100 लोग आराम से बैठ सकते थे, ऐसे लोग होते थे। बाद में करीब 300 साल के बाद से फिर ये चर्च बनने का इतिहास आरंभ हुआ है, उसको हम इतिहास में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ इसलिए कि लुद्दा याफा के लुद्दा जगह है और लुद्दा में तबीता है, याफा में पतरस है, लिखा हुआ है याफा के निकट। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, याफा में है, 2 मनुष्य को उसके पास यहाँ विनती करके भेजा, हमारे पास आने में देर न कर। लुद्दा और याफा की दूरी बिल्कुल इतनी दूरी थी जैसे सियोन चर्च लखनऊ से सियोन चर्च बाराबंकी, बिल्कुल करीब लगभग 16 किलोमीटर की दूरी, यही दूरी थी। और इतनी दूर पर वो याफा में पतरस था और पतरस को लोगों ने बुलाया, लोगों ने, क्योंकि उससे पहले लोगों ने देखा था कि पतरस ने प्रार्थना की थी और वो चंगा हो गया था, और इसलिए उनका विश्वास उस सेवक के ऊपर बढ़ता चला जाता, इसलिए उन्होंने बुलाया उसको। और जब वो वहां पर आया तो लिखा हुआ है 2 मनुष्य को भेजा, वो हमारे पास आने में देर न करे। पतरस उनकी बात को माना, सुना, उठकर चल दिया। जब वो वहां पहुंचा तो उसे अटारी पे ले गए, सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, जो कुर्ते तथा वस्त्र दोरकस उनके साथ रहते हुए बनाया करती थी उसे दिखाने लगी। तब पतरस ने उन सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव के ओर मुड़कर कहा, तबीता उठ। उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर वो उठ बैठी, उसने अपना हाथ देकर उसे उठाया तथा पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित सौंप दिया। तथा पवित्र लोगों और विधवाओं को, ध्यान दीजिएगा, पवित्र लोग जो वहां पर कलीसिया के लोग थे, विश्वासी लोग थे जो यीशु मसीह का को मान रहे थे, आराधना करने के थे, वे पवित्र लोग थे, और वहां कुछ विधवाएं थी जिन विधवाओं के साथ रह करके ये तबीता सेवा करती थी, कार्य करती थी। अब हम तबीता के बारे में कुछ देखना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा स्थल है कि किस रीति से परमेश्वर ने इस स्त्री को, इस तबीता को जीवित किया। तबीता नाम बहुत अच्छा नाम है, मुझे बहुत पसंद है। अभी भी किसी परिवार में कोई बेटी हुई, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको ये नाम दोरकस और तबीता बताया है। आज से करीब 40 साल पहले किसी को नाम ये मैंने दिया था और ये बहुत ही, इसका चरित्र बहुत अच्छा है। यहाँ पर तबीता और दोरकस, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये पहली बात थी, एक शिष्या थी। सच पूछा जाए तो इसके नाम का जो अर्थ है सविता दौरकर का, एक और नाम इसका है, और जो नाम जो शब्द है वो गजेली है। गजेली, गजेली को इंग्लिश में गजेली शब्द है, ये दौरकस यूनानी शब्द है और तबीता आरामिक शब्द है। तो वहां इस तरह की भाषाएं बोली जाती थी, इसलिए उस भाषा में एक एक या दो दो नाम अलग अलग रखे जाते थे। दौरकस ग्रीक है, यूनानी है, क्योंकि यूनानी वहां पर है, और उसका एक और अर्थ जो था वो गजेली था। गजेली नाम का मतलब होता है हिरणी, हिरणी बहुत ही सुंदर है, और हिरणी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। विशेषता हिरणी प्यासी, इसीलिए दाऊद कहता है जैसे हिरणी जंगल में जल के लिए प्यासी है, प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। हिरणी का स्वभाव जल के लिए प्यासा होना है, तभी तक स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की प्यासी थी। काश प्रभु करे इस तबीता केवल नाम ही, लेकिन तबीता के स्वभाव, तबीता के गुण, तबीता की चर्च की हमारी कलीसिया में बहुत सारी बहनें पाई जाए, बहुत सारी बहनें जाए, ये मेरी प्रार्थना, ये मेरी अभिलाषा है। आज की कलीसिया में जितने लोग सुन रहे हैं और जितनी बहनें सुन रही हैं, आज ध्यान दीजिए, क्या ये सच में ये है वो गुण जो तबीता के अंदर था, गजेली हिरणी, क्या वो यीशु मसीह के लिए परमेश्वर के लिए आप प्यासी हैं? वो दाऊद कहता है जैसे हरणी जल के लिए प्यासी है, मैं प्रभु के लिए प्यासा हूँ। कितने सुंदर है। अब ना उसका वो एक शिष्य थी, यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया था पूरी से। शिष्य वो है जो यीशु से सीखने के लिए तैयार है, यीशु के चरणों में रहने के तैयार है, यीशु की सेवा करने तैयार है, एक शिष्य। और यहाँ पर वो शिष्य है। सच पूछा जाए बाइबल में बहुत कम महिलाएं हैं जिनको शिष्य का शब्द इस्तेमाल किया गया है, पुरुषों के लिए बहुत इस्तेमाल किया गया है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत कम महिलाओं के लिए, वे विशेष प्रकार के थे। और काश सच में आज कलीसिया में वो बहने हों जो शिष्य हों, जो यीशु मसीह के चरणों में रह सके, जो यीशु मसीह के साथ संगति कर सके, वचन में बढ़ सके, उनके जीवन में पाया जा सके और कलीसिया की सेवा करने के लिए ललायित हो सके। बहनों के जीवन में बहुत बहने कलीसिया के लिए आशीष का कारण बन सकती हैं और बहने कलीसिया के लिए नुकसान का कारण बन सकती हैं। जब बहने पॉजिटिव स्पिरिट रखती हैं, सकारात्मक बातचीत करती हैं, तो कलीसिया को जोड़ती ही बनाती हैं। जब बहनें नकारात्मक स्पिरिट में रखती हैं तो वो एक दूसरे को तोड़ती हैं, अलग करती हैं। और जब बहनें इकट्ठा होती हैं, बहुत गंभीर बात है, ध्यान दीजिएगा, वो कलीसिया बहनों के ऊपर बहुत निर्भर होती है। तो आगे चल के देखेंगे कुछ बातों को जो बहनों के बारे में परमेश्वर का वचन और बताता है। कलीसिया में बहनें कलीसिया को उन्नति की ओर ले आती हैं और कलीसिया में बहनें कलीसिया को पीछे भी हटा सकती हैं। आपको सोचना है कि आपका जीवन, आपका योगदान, आपकी बातचीत, आपकी शिष्यतापन कलीसिया को कितना अधिक मजबूत कर रहा है, कितना अधिक आगे बढ़ा रहा है, ये आपको देखना है। ना तो ये वो एक शिष्य थी, वो यीशु मसीह की सेवा करती थी एवं स्वयं साक्षी देती थी। लिखा हुआ किस प्रकार से, और उसके लिए लिखा हुआ है वो स्त्री निरंतर भले भले कार्य, भले भले कार्य, भले भले कार्य की बहुत बड़ी लिस्ट बनाई जा सकती है। क्या भले भले कार्य है कलीसिया में, किस प्रकार से दूसरों की सहायता करना है, दूसरों की देखभाल करना है, दूसरों की चिंता करना है, पौनाई करना है, बहुत सारी चीज भले काम करना है दूसरों के, बातचीत में, प्रार्थना में, सेवा में, है ना, उसका जीवन भलाई और प्रेम के साथ भरा हुआ था। तबीता का जीवन भलाई और प्रेम के साथ, आज कौन सी तबीताएं कलीसिया में पाई जाती हैं? मैं किसी नाम को लेकर नहीं कह रहा हूँ, मैं बहनों के लिए क्या कह रहा हूँ, उनके गुण को। कितनी कलीसिया में कितनी बहनें हैं जो आप सच में कलीसिया में, परिवार में, विश्वास में, आप भलाई करने में और प्रेम से जीवन को व्यतीत करने में लगे रहते हैं, या नुक्ता चीनी में काट खाँच करने में, तोड़ने फोड़ रहे हैं, और आपके कारण दूसरे टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ये चेतावनी की बात है, सावधान होने की बात है। उनका जीवन, उसका जीवन स्वार्थ रहित था, उसका जीवन स्वार्थ रहित था, उसके जीवन में बहुत सारी बात आप देखते हैं स्वार्थ रहता। आगे कुछ और देखेंगे, वो भले भले कार्य करते थे, दान दिया करती थी, लोगों की सहायता करती थी। वो जो विधवाएं महिलाएं थी उसको चारों ओर से घेरे रहती थी, और इसीलिए जब उसकी मृत्यु हो गई लोगों ने उसको दफन नहीं किया, लेकिन उसके लिए ये आशा करते काश इसको जीवन मिल जाए, काश इसको जीवन मिल जाए, जिससे आज भी जो विश्वासी लोग हैं, जो लोग हैं, वो उन्नति का कारण बन सके। और यही कारण था कि उन्होंने पतरस को बुलाया, मेरे पियो, सच में लिखा हुआ यहाँ पर 39 पद में, तब पतरस उठकर साथ चल दिया, तब वहां पहुंचा, सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते तथा वस्त्र दौरकस उनके साथ रहते हुए बनाया करती थी उसे दिखाने लगी। कितना परिश्रमी थी, कितना उसका हाथ अच्छे कार्य से भरा हुआ था, मुझे याद है जब हमने बाराबंकी चर्च शुरू करा था और बाराबंकी चर्च में हमारे पास समय कोई ऐसा सहयोग नहीं था, उस समय किस प्रकार से बहनों ने मेहनत कर की, बहनों ने कुछ कपड़े बनाए थे, बहुत समय बहने बहुत सारी बहनें थी जो आज नहीं है, उन्होंने बहनों ने कपड़े बनाए, अलग अलग तरह की चीजें बनाई, हम लोग सेंटर चलाते थे सिलाई सेंटर, उसमें कपड़े और वो कपड़े हम लोगों ने सेल से करके उस चर्च को बनाने के लिए धन जमा करा गया धरा था। आज भी अगर बहने हमारे कलीसिया में हुनरदार हो जाए, कुछ कुछ करके करने के तैयार हो जाए, कलीसियाएं बहुत बढ़ सकती हैं। कलीसिया को दूसरे ऊपर निर्भर नहीं होता, अपने हाथ के कार्यों के द्वारा सेवा के द्वारा बहुत तरह का योगदान करती है। वो कपड़े बनाकर शायद गरीबों को बांटती होगी, दूसरों को देखती होगी, कपड़े बना करके वो शायद कलीसिया में लाती होगी, कई तरह से कर तो क्योंकि बहुत सारी थी वो उस कपड़ों को दिखा रही थी, शायद उसने बनाकर उनको दिए होंगे कि ये कपड़े सविता ने बनाए थे और हमें दिए हैं। क्या मेरे प्रियो, आज हमारी कलीसिया में ऐसे बहने हैं जो इस प्रकार से अपने जीवन को कलीसिया की सेवा के लिए दे सकें और कलीसिया में लगा सकें। केवल कल चर्च में आकर अटेंड करके चले जाना काफी नहीं है। इन दिनों में जब आप घर में हैं, कौन सी बहन वो कलीसिया के बारे में सोच रही है कि जैसे प्रभु आपको अवसर दे कि आप परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के भवन में आप ये करने के तैयार होंगे, या कुछ होगा जिसको आप कलीसिया के लिए लेकर जाएंगे और ताकि आप करेंगे, क्या सोच रहे, क्या विचार है, क्या तबीता का वो गुण, तबीता का क्या वो हरणी का स्वभाव आपके जीवन है, क्या परमेश्वर की लड़ाई है। मेरे प्रियो, जब उन्होंने दिखाया सब कुछ हुआ तब पत्रस ने प्रार्थना की और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने तबीता को जीवन प्रदान किया। परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या क्रम चल रहा है। पहले प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को जीवन प्रदान किया, वो आत्मिक जीवन था, वो भी मृतक था, वो अपने आप को जीवित समझा था लेकिन मृतक था, और वह आत्मिक जीवन प्रदान करके, दर्शन प्रदान करके उसको तैयार करके अपनी सेवा के लिए उठाता है। दूसरा एक झोले का माला है जो 8 वर्षों से लकवे का माला इस तरह से पड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, कितनी बार हमारा जीवन एक लकवे के मारे के समान होता है, लेकिन हमें जीवन की जरूरत है। परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो प्रार्थना में सहमत है, परमेश्वर मुझे और आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर से तभी तक वो जीवन दिया, जीवन देना। हम देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार से अपनी कलीसिया को मजबूत कर रहा है, बढ़ा रहा है, लोगों को जीवन प्रदान कर रहा है, आत्मिक जीवन दे रहा है, शारीरिक जीवन दे रहा है, और पिता परमेश्वर उनके सारे झोलेपन को दूर करके अपने महिमा के लिए उनको कर रहा है, लोग उनके द्वारा प्रभु में आ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो प्रेरित काम की पुस्तक केवल चर्च स्थापित नहीं हो रहा है, लेकिन उस चर्च के द्वारा, कलीसिया द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट कर रहा है, अपने अपने नाम को प्रकट कर रहा है, और लोग उसकी सच्चाई को, लोग उसकी गहराई को जान सके। आखिर परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है, परमेश्वर सर्व अधिकारी परमेश्वर है, और परमेश्वर कलीसिया में प्रत्येक अलग अलग प्रकार से लोगों को जोड़ता है। ये ऐसा परमेश्वर है, उसकी सनातन योजना अद्भुत है। और तब वो देखते हैं कि किस रीति से 41 पद में लिखा हुआ है, उसने अपना हाथ देकर उसको उठाया, पत्रस ने अपना हाथ देकर उठाया। ये सच है, पत्रस ने सबको बाहर निकाला, प्रभु यीशु मसीह ने भी लोगों को बाहर निकाल दिया था जब वो प्रार्थना करने के लिए आए थे। हम प्रेमति में पाते हैं मरकुस में भी, मरकुस 5 अध्याय में अगर देखेंगे वहां पर भी है, अधिकारी की बेटी वहां पर अधिकारी। कारण क्या था? ताकि लोग उस कमरे में इकट्ठा होकर व्यर्थ बातें ना करें और प्रार्थना के काम में बाधक ना हो। कलीसिया में जब भी कभी कई बार ऐसा होता है कोई दुष्ट आत्मा अटैक करती है, अवश्य यह अच्छा है कि उस समय कलीसिया से उसको बाहर ले जाया जाए, लोग उसी समय वहां प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं कलीसिया कर रहे हैं, कलीसिया में वचन की सेवा हो रही है, आराधना हो रहा है, होने दीजिए, लेकिन उस शख्स को, उस जन को, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा, उसको बाहर ले जाइए, अलग प्रार्थना कीजिए ताकि दूसरे लोग उसके कारण बाधित ना हो। ये परमेश्वर कलीसिया के वचन का सिद्धांत है, तरीका है, और हम कलीसिया ने इसी प्रकार से करते भी हैं। तो यहाँ पर हम बातों को देखते हैं। तब उसके बाद 42 पद में ये बात पूरे याफा में फैल गई और बहुत उन्हें प्रभु पर विश्वास किया। देखिए, हर बार हम एक ही बात को देख रहे हैं, विश्वास, विश्वास लोग हमारी सेवा के द्वारा लोग विश्वास करें, लोग प्रभु के ऊपर फिरें, परमेश्वर को महिमा मिले। हमारी सेवा के द्वारा, चाहे वो सुसमाचार की सेवा हो, चाहे वो विजिटिंग की सेवा हो, हम विजिट करते हैं काय के लिए विजिट करते हैं? लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर नहीं, प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए, प्रभु का वचन आदर पाना चाहिए, प्रभु का नाम आदर पाना चाहिए, प्रभु का नाम। अगर हम अपने विजिटिंग के द्वारा लोगों को तोड़ते हैं तो वो पाप है, वो कलीसिया को जाड़ना है। और कितने लोग इस प्रकार से आज कर रहे हैं, कितने लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, हमें सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है। परमेश्वर के वचन प्रेरित काम की पुस्तक वो सिद्धांतिक पुस्तक है जिसमें कलीसिया की बढ़ोतरी का सारे सिद्धांत दिखाए गए सिखाए गए हैं। जीवनों के द्वारा हम देखते हैं, कार्य के द्वारा हम देखते हैं, परिश्रम के द्वारा देखते हैं, और हमें परमेश्वर के वचन को गहराई से समझना है। ये लिखा हुआ है। अब 43 पद बहुत इंपॉर्टेंट पद है। 43 पद में लिखा हुआ है, और पतरस याफा के चमड़े का धंधा करने वाले शमान नामक एक व्यक्ति के साथ बहुत दिन तक रहा। ध्यान दीजिएगा, पतरस यहूदियों के बीच में सेवा कर रहा है। अब यहां से एक और परिस्थिति है। अब परमेश्वर किस प्रकार से आश्चर्यकर्म कर रहा है, तापर जितने भी प्रेरित काम में देखेंगे आप एक ही चीज देखेंगे, सुसमाचार की सामर्थ्य प्राप्त करी है, और सामर्थ्य प्राप्त करने अब सुसमाचार जीवनों को परिवर्तित कर रहा है और कलीसिया की ओर ले जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये चमड़ा का धंधा करने वाला, उस समय ये लोगों को अशुद्ध माना जाता था या छोटा माना था, और हर एक जन चमड़ा के धंधा करने वालों के साथ बैठना उठना भी पसंद नहीं करते थे उस समय। लेकिन एक यहूदी व्यक्ति वहां पर रह रहा है, उसके पास रह रहा है, नहीं मालूम अब पतरस के साथ परमेश्वर क्या करने जा रहा है, लेकिन अभी पतरस को कुछ और सीखना है, पतरस को कुछ और सीखना है। और पर यहां पर रह करके पतरस सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, लोगों को शिक्षा दे रहा है, लोगों को प्रभु के बारे में बता रहा है, सब कुछ है। दस अध्याय में एक और परिवर्तन की बात देखते हैं। हम कोशिश करेंगे जहां तक हम आज जा पाएंगे हम जाएंगे, लेकिन क्यों है, तीन मुख्य बातें, ये सब कुछ है। क्यों परमेश्वर ने पतरस के द्वारा ये कार्य होने दिए, ये चंगाई का कार्य होने दिया, चाहे वो तबीता को जिलाना है, चाहे अन्यास का को ठीक करना है, कुछ भी काम करना है, क्यों? पहली बात, परमेश्वर की उपस्थिति एवं सामर्थ्य के उसके साथ है। पहली चीज, ये स्वीकृति थी, ये एक्सेप्टेंस था, ये स्वीकार, लोग इस बात को जान सके, पहचान सके, स्वीकार कर सके, एक्सेप्ट कर सके कि परमेश्वर का हाथ पतरस के जीवन और उसकी सेवा में है। इसलिए क्योंकि अब कुछ समय बाद पतरस को यरूशलम से बाहर सेवा करनी है, यरूशलम से बाहर सेवा करनी है, और इसलिए अगर उसके लोग इस बात को ना जाने कि पतरस के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसकी सेवा बाहर ग्रहण नहीं हो सकती, और इस बात को जानना और समझना बहुत जरूरी है। सेवा में परमेश्वर का हाथ होना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग बहुत आसानी से चर्च शुरू करना चाहते हैं और कर लेते हैं, लेकिन कब क्या है, कितने भाइयों को, कितने जिनों को देखता हूं, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर नहीं आते। वो सोचते हैं कि उनके ऊपर है, वो सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर नहीं आता। और इसलिए हमें परमेश्वर के साथ अपने आप को दीन और नम करते हुए उसके अधीनता में डालना है। दूसरी बात, सेवा उस क्षेत्र में जहां अब अन्य जाति थे, अब सेवा क्षेत्र में बढ़ेगी, अभी यहूदियों के बदले यरूशलेम के आसपास है, अब परमेश्वर का सुसमाचार बाहर जा रहा है, इसके बाद बाहर जाएगा। क्यों? परमेश्वर ने कहा था जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम, सामरिया और यहूदिया और दुनिया के छोर छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो यरूशलेम में परमेश्वर का वचन पहुंचा, सामरिया में परमेश्वर का वचन पहुंचा, अब इसके बाद अन्य जाति के बीच में पहुंच रहा, फिर बाहर पहुंचेगा, उसको हम देखते हैं। वो चमड़े का धंधा करने वाले के साथ इसलिए ताकि लोग जान सके कि परमेश्वर हर एक को ग्रहण करता है, परमेश्वर हर एक को ग्रहण करता है। परमेश्वर की दृष्टि में किसी भी प्रकार से ना तो कार्य विभाजन करता है, ना जाति विभाजित करती है, ना धन विभाजन करता है। परमेश्वर की दृष्टि में प्रत्येक जन उसकी दृष्टि में बराबर है, और प्रभु यीशु मसीह संसार में हर एक व्यक्ति के लिए आए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी कुल का हो, किसी भाषा का हो। कई बार हम प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु में विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब खास में विवाह की बात आती है तो विवाह की बात हम जातियों को ढूंढते हैं, हम तब उस समय भूल जाते हैं कि हम एक ही परमेश्वर की संतान है, एक ही परमेश्वर की सृष्टि है, एक ही परमेश्वर से हमने उद्धार को पाया है, और एक ही परमेश्वर। क्यों? शायद परिवार का दबाव रहता है, चाहे रिश्तेदारों का दबाव रहता है, शायद हमारी मानसिकता हुआ है, मानसिकता, और हम अपनी मानसिकता में इतना अधिक दब जाते हैं कि हम उससे निकलने नहीं पाते, हम उससे निकलने नहीं पाते। यहां तक जाति में भी जाति ढूंढते हैं लोग, ये ठीक नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य मनुष्य है, और उससे सारे मनुष्य के लिए क्योंकि वचन में लिखा है जो प्राणी पाप करे वो निश्चय मर जाएगा। हम तो पापी थे, एक दिन नाश हो थे, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे और आपको बचा लिया, हमने उस पर विश्वास कर लिया। चाहे किसी भी जाति से, किसी भी कुल से, किसी भी भाषा से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी स्थान से, उसने मुझ पर और आप पर दया किया। अब परमेश्वर ये चाहे कि हम उस बंधन से अलग हट करके आगे बढ़ सके, और ये तीन मुख्य बातें हम देख सकते हैं। तब आगे चल करके हम देखते हैं किस तरह से 10 अध्याय में हम 5 भागों में इसको बांट सकते हैं, कुरनेस के घटना को, जो कुरनेस के साथ घटना घट रही है। यहाँ पर भी हम एक परिवर्तन की, हृदय परिवर्तन या जीवन परिवर्तन की घटना देखते हैं जो पूरे परिवार के साथ है। उससे पहले हमने कुछ लोगों व्यक्तिगत रीति से देखा, कुछ परिवारों को देखा, लेकिन यहाँ पर भी हम कुछ परिवारों को देख रहे हैं। अब इस अध्याय में जो हालांकि 48 पद हैं, लेकिन 5 बिंदु का हम इन 48 पदों में बांटेंगे। हम देखेंगे हम कहाँ तक जा सकते हैं आज। पहला बिंदु 10 अध्याय का पहले पद से लेकर 8 पद तक कुरनेस का दर्शन, परमेश्वर कुरनेस को दर्शन दे रहे हैं। पहले पद से लेकर 8 पद तक 10 अध्याय के कुरनेस का दर्शन, 10 अध्याय के 9 पद से लेकर 16 पद तक पतरस का दर्शन। प्रभु इधर कुरनेस का दर्शन दे रहे हैं, इधर पतरस को दर्शन दे रहे हैं, हम देखेंगे क्यों। तीसरा 10 अध्याय के 17 पद से लेकर 23 पद तक संदेश वाहक का आना, संदेश वाहक मैसेंजर जो संदेश लेकर जाता है किस प्रकार से पतरस के पास, और पतरस से कैसे बातचीत करता है उसको हम देखेंगे। 10 अध्याय के 23 पद से लेकर के 43 पद तक अन्य जातियों का आना। अब किस प्रकार से अन्य जाति, जो अन्य जाति है, किस प्रकार से और कैसे परमेश्वर अपने वचन पहुंच तक पहुंचाता है। तब 10 अध्याय के 44 पद से 48 पद पवित्र आत्मा का वरदान, इसको जब हम देखेंगे थोड़ा मैं विस्तार से इस पर जाऊंगा, क्योंकि ये तीसरा स्थल होगा जो पवित्र आत्मा के ले जाने के संबंध में है। जब हम आगे बढ़ते हैं, लूका द्वारा पुनः इस हृदय के जीवन के परिवर्तन के वाली घटना का वर्णन बहुत ही अनिवार्य था। आप भौगोलिक दृष्टि से ये सुसमाचार यहूदियों सामरियों से आगे बढ़कर अन्य जाति तक पहुंच रहा था, यही कारण है लूका अन्य जातियों के मन में सुसमाचार एवं विवाद का वर्णन इस 10, 11 अध्याय और 15 पद करता है। जहां पर अन्य जाति के बीच में सुसमाचार पहुंचता है, क्या विवाद होते हैं, क्या वार्तालाप होते हैं, क्या कुछ होता है, उन चीजों का वर्णन लूका इन 3 अध्याय में बहुत ही विस्तार के साथ करता है। लेकिन आइए हम क्रम से इन घटनाओं पर विचार करना चाहेंगे। जो पहली घटना है, पहले स्थल 10 अध्याय के 1 पद से लेकर 8 पद तक कुरनेलियुस का दर्शन, परमेश्वर कैसे कुरनेलियुस को और उसके परिवार को दर्शन देता है। थोड़ा कुरनेलियुस के बारे में जाने, लिखा है कुरनेलियुस के बारे में, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति था। वो उस सैन्य दल का सूबेदार था जो इतावली कहलाता था। वो भक्त था, ध्यान दीजिएगा, वो भक्त था तथा अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। अन्य जाति पृष्ठभूमि से है, वो यहूदियों को बहुत दान दिया करता था और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। दिन के 3 बजे के लगभग उसने दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, एक स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर उससे कहा। अभी कुरनेलियुस अन्य जाति पृष्ठभूमि से है, लेकिन ये यहूदियों के परमेश्वर अर्थात यहोवा परमेश्वर, अर्थात अब इस समय यहोवा नामी है, अब इस समय यीशु है। यीशु से वो बहुत ही अधिक प्रभावित था, वो सुन रहा था, उसने बार बार उन कार्यों की चर्चा सुनी थी, सुसमाचार सुना था, और धीरे 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 अब वो प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आना लगा था, परमेश्वर को जानने लगा था, इसलिए वो आकर्षित था। अभी तक पूरा परिवर्तन ही हुआ है, लोग इतना उसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन उसके जीवन की एक इच्छा यह है कि वो परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है, परमेश्वर को जानना चाहता है, और चाहता है कि उसका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को जाने और उसके पीछे चल, ये उसके मन की अभिलाषा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप में से कोई भी है जो सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह को खोज रहा है, आप निश्चय जानिए प्रभु अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेंगे और आप जानेंगे यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। और आज कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इच्छा प्रकट की या खोज की परमेश्वर को जाने के लिए, परमेश्वर ने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया। यही स्थिति इस कुरनेलियुस की भी है, और उसी कारण लिखा हुआ है वो घराना कैसा, वो भक्त था, घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था, यद्यपि इतना भी उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन जो कुछ वो सुन रहा था उसके अनुसार वो जीवन व्यतीत करना चाहता था जिसमें वो परमेश्वर के भय के साथ जीवन व्यतीत। यहूदियों को बहुत दान देता, वो जानता था कि यहूदियों का परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारे लोग यहूदी प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। अब वो यहूदी आराधनालय में जाता था, लेकिन उस समय भी अलग अलग स्थानों पर एक मुख्य आराधनालय होता था जो यरूशलेम में था, लेकिन अलग अलग स्थानों में उनके छोटे छोटे आराधनालय होते थे और लोग उस आराधनालय में जाया करते थे और दिन में तीन बार वो उन लोग प्रार्थना करा करते थे। वो नियम के अनुसार जो हम भजन संहिता उसके 55 अध्याय में देखते हैं, पुराने नियम में दानियल में भी देखते हैं उसको, आप समय नहीं कि हम उसमें जाए, लेकिन अगर जब पुराने नियम में हम जाएंगे तो आप देखेंगे भजन संहिता 55 और दानियल उसका 6 अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि तीन बार दानियल भी प्रार्थना करता था और दाऊद भी तीन बार परमेश्वर के सामने जाता था। ना उसके बाद न कल ये, लेकिन वो परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करता था और उसके लिए शब्द लिखा हुआ है वो धर्मी था। आगे चल करके हम देखते हैं उसके बारे में, वो धर्मी था। ये जीवन उसको परमेश्वर के सच्चे खोज के अभिलाषा दिखाता है और परमेश्वर ने जान लिया कि एक व्यक्ति है जिसके अंदर ये सारी चीज बातें हैं, लेकिन उसको सच्चे सुसमाचार को जाना है। तो कैसे उसको सुसमाचार तक पहुंचाया जाए? अन्य जाती है, लोग उसके पास जाना नहीं चाहेंगे, लोग उसके पास पहुंचना चाहेंगे। अभी तक सुसमाचार यहूदियों के बीच में सामने पर वहां पर पहुंचा नहीं है, अब कैसे आगे बढ़ेगा? तब परमेश्वर क्या करता है, 10:4 पर, जब स्वर्गदूत उसके पास आया भीतर आकर उससे कहा, कुरनेलियुस, 4 पद में एकदम कुरनेलियुस चौंक गया, ध्यानपूर्वक का देखा ही कौन है, भयभीत भी हुआ और कहा हे प्रभु क्या है? उसका संबंध देखे तो स्वर्गदूत कौन कहा है, कौन है, कैसी आवाज है, लेकिन उसके शब्द से निकला प्रभु क्या है। उसने उत्तर दिया तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मृति के रूप में परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे हैं। अब कुछ व्यक्तियों को याफा भेजकर शमान नामक एक व्यक्ति को जो पत्रस भी कहलाता है बुलवा ले। वो चमड़े का धंधा करने वाले शमान नामक किसी व्यक्ति का अतिथि है जिसका घर समुद्र के पास है। दो शमान है, एक शमान पत्रस है जिसके पत्रस के नाम से शमान करा गया, एक शमान जो चमड़े का धंधा करने वाला है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जब स्वर्गदूत जिसने उसे बातें की थी चला गया, तब उसने अपने दो सेवकों और निरंतर अपने समीप रहने वाले भक्त सैनिकों को में से एक को बुलाया और उन्हें सारी बातें समझा कर याफा भेजा। अभी उन्होंने एक लिखा हुआ है आगे चल करके नामक व्यक्ति था, वो सैन्य दल का सूबेदार था। हम पहले भी देखते प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार की बेटी को चंगाई दी, सूबेदार ने अपने बेटी के चंगाई के लिए यीशु के पास भेजा लोगों को, जब लोग उसके पास गए लड़की चंगी हो गई, तब उसके बाद एकदम से उसने कहा यीशु को मेरे घर आने की जरूरत नहीं है और तब उस रीति से तोड़ दिया अधिकार। और इन सूबेदार के अंदर 100 सैनिक रहते थे, 100 सैनिक का यह शासक होता था और 100 सैनिक उसके अंदर रहते थे जिसका वो संचालन करता था और जो उसकी आज्ञा का पालन करते थे। तो ये भक्त भी है, ये धनी व्यक्ति भी है, ये अधिकारी भी है, ये सम्मानित भी है। तो ऐसा वैसा नहीं है, ऐसा केवल अन्य जाति केवल नहीं, नहीं, लेकिन इसका पद है, इसके पास स्थान है, इसका नाम है, इसके काम अच्छे हैं और इसके पास धन भी है और कई नौकर उसके नीचे हैं जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और इसलिए वो उनके पास भेजता है। क्या हुआ है दर्शन में स्वर्गदूत ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने कहा ठीक है, जो तू प्रार्थना करा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। संभवतः परमेश्वर जानता है सब कुछ, इसकी प्रार्थना ये होगी परमेश्वर मैं तुझे और जाना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझे और जाना चाहता हूँ, मुझे और सिखा दे, मुझे और दिखा दे, मुझे और बता दे। मेरे प्रिय दाऊद की यही भी प्रार्थना है। दाऊद भजन संहिता में बार बार भजन संहिता 119 में परमेश्वर से मुझे अपने मार्ग पे चला, मुझे दिखा, मुझे सिखा, मुझे समझा। क्या ये आज हमारी प्रार्थना है? प्रभु मैं आपको और अधिक जानना चाहता हूँ। ठीक है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले या 20 साल पहले प्रभु आपको मैंने अपना प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, लेकिन मैं आज और भी अधिक आपको देखना चाहता हूँ, मैं और अधिक आपको जानना चाहता हूँ। क्या ये आपके पास अभिलाषा है? हम संसार की भौतिक बाधिकता को जानते हैं, वो तो चाहते हैं हमारे पास घर हो, हमारे पास कपड़ा हो, हमारे पास मकान हो, हमारे पास नौकर हो, हमारे पास चाकर हो। ठीक है, अगर प्रभु देता कोई बात नहीं, लेकिन वो प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, वो सब कुछ नहीं है। अगर ये सब कुछ मिल जाए लेकिन आपके पास वो चाहना नहीं है जो प्रभु को जानने की है, प्रभु के पीछे चलने की है, प्रभु को खोजने की, तो सब कुछ बेकार है। मेरे प्रियो, काश मेरे और आपके मन में इस करुणामय वो अभिलाषा उत्पन्न हो सके, परमेश्वर हम आपको और अधिक जानना चाहते हैं, प्रभु हम और अधिक समझना चाहते हैं, और अधिक सच्चाई को जानना चाहते हैं, सुसमाचार को समझना चाहते हैं और परमेश्वर तब उस प्रार्थना को सुनता है मेरे प्रियो। और इसीलिए लिखा वो अपने बहुत सारे दानों को भी दिया करता था। मैं दान के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि देना के बारे में बोलना सबसे ज्यादा लोगों को दुख का कारण बनता है, लेकिन ये आपके और मेरे आपके और परमेश्वर के बीच में है और परमेश्वर जानता है हम उसके द्वारा कितना आदर करते हैं परमेश्वर का। आगे चल करके तब कहता है, तब 9 पद से लेकर के 16 पद तक अब परमेश्वर क्या काम कर रहा है। अब परमेश्वर इधर कन्वेंस को तैयार कर रहा है, इधर पत्रस को तैयार कर रहा है। परमेश्वर अपने राज के सुसमाचार को फैलाने के लिए सब कुछ को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। सार्वभौमिक परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्व समर्थी परमेश्वर है, सर्व अधिकारी परमेश्वर है और वो सब कुछ को चाहे कुरनेलियस उसका परिवार हो, उसका जीवन हो, उसका वो परमेश्वर के नियंत्रण में, पत्रस भी परमेश्वर के नियंत्रण में। पत्रस का स्वभाव है, पत्रस का चरित्र है, पत्रस की निर्मलता है, पत्रस का गुण है, परमेश्वर कैसे उसको नियंत्रित करके उस कार्य को कर रहा है। लिखा हुआ दूसरे दिन जब चलते चलते नगर के पास पहुंचने पर थे, उसी समय दोपहर के लगभग पत्रस प्रार्थना करने के लिए छत पर गया। पत्रस प्रार्थना, अब ये लोग पहुंचे नहीं है लेकिन ये लोग उस अपने स्वामी की आज्ञा को पालन करते हुए स्वर्गदूत ने जो कहा उसका पालन करते हैं। स्वर्गदूत ने कर्नेस को कहा है, कर्नेस ने अपने सेवकों को आज्ञा दी है अभी किस प्रकार से चेन बन रही है और वो उस पार पे चले हैं। जब उसके घर में अभी पहुंचे नहीं, कुछ ही दूर है, पत्रस प्रार्थना करने गया है कैसे परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है। लिखा हुआ है उसे भूख लगी, किसको, पत्रस को। पत्रस शायद उपास की प्रार्थना कर रहा हुआ, उसने परमेश्वर उसकी भूख को और अधिक बढ़ा दिया, लेकिन छत पे प्रार्थना कर रहा है, भूख लगी, कुछ खाने की इच्छा हुई, परंतु जब मैं तैयारी कर रहे थे तो बेसुध हो गया। नीचे सोचता है लोग नीचे खाना बना रहे हों, लेकिन अभी पत्र प्रार्थना में और प्रार्थना करते करते वो बेसुध हो जाता है, बेहोशी की स्थिति में आ जाता है। लिखा हुआ है 11 पद में, उसने देखा कि आकाश खुल गया और बड़ी चादर जैसी कोई वस्तु चारों कोने से लटकती हुई भूमि पर उतर रही है, जिसमें सब प्रकार के चौपाय और पक्षी के रेंगने वाले जंतु आकाश के पक्षी थे। उसे एक आवाज सुनाई दी, पत्रस उठ मार और खा। पत्रस भूखा है, परमेश्वर उसकी भूख को जानता है, परमेश्वर निंद कर रहा है, परमेश्वर ने हो सकता है उसकी भूख को बढ़ाया हो ताकि इस भूख के बढ़ने के द्वारा पत्रस को परमेश्वर को सिखा सके। और तब पत्रस ने उस चादर को देखा, उस चादर में बहुत सारे जीव जंतु हैं, पक्षी, सब ये सब में देख रहा है, सब में सब दिखाई दे रहा है कि एक चादर उतर रही है और इसमें है। उसे कहा गया उठ और मार खा। यहाँ परमेश्वर पत्रस को एक आज्ञा दे रहा है, कर्नेलियस को परमेश्वर ने आज्ञा दी, कर्नेलियस ने तुरंत उस आज्ञा को माना, पालन किया। पत्रस को यह आज्ञा दे रहा है, पत्रस क्योंकि यहूदी पृष्ठभूमि था, व्यवस्था को भी जानता था, यीशु मसीह को भी जानता था और सब कुछ। तब क्या हुआ 14 पद, परंतु पत्रस ने कहा नहीं प्रभु कदापि नहीं, नहीं प्रभु कदापि नहीं। क्यों, उसके दिमाग में वो व्यवस्था थी कि कौन सा पक्षी शुद्ध है और कौन सा पक्षी अशुद्ध है, मैं इन अशुद्ध पक्षियों को नहीं खाऊंगा, मैं उनको नहीं छूंगा, कौन सा पशु है। लेकिन पशु पक्षियों के चौपाए के नाम है, चौपाए जो देखने वाले होते हैं ये सब कुछ, पर परमेश्वर कह रहा है उठ, खुश तथा वो उठता, उठ करके चादर देता, कौन कौन सी चीजें जो मैं खाता नहीं खाता, क्योंकि व्यवस्था में सबको समझाया गया था क्या चीज खानी क्या चीज नहीं खानी, उसके दिमाग में ही है। लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज आई है, नहीं ये अशुद्ध है, मुझे इसको नहीं खाना। परमेश्वर पत्रस को सिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है, सिखा रहा है, लेकिन पत्रस पुरानी मानसिकता को लेकर के, पुरानी रीति विधियों को लेकर के अभी भी उसी के अनुसार चल रहा है। वो कह रहा है कदापि नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र और अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। मैं तो यहूदी पृष्ठभूमि से रहा हूं, मैंने व्यवस्था का पालन किया है और व्यवस्था में बहुत सारे पशु पक्षी दिए गए थे जिसमें कहा था ये तुम खा सकते हो ये तुम नहीं खा सकते, जो खाने के लिए आदेश दिया था मैंने उसको खाया है, जो खाने के लिए नहीं ना खाने के लिए आदेश दिया था उसको मैंने नहीं खाया है। लेकिन पत्रस परमेश्वर कुछ और कहता है, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने उस समय कुछ नियम ठहराए थे, लेकिन आज परमेश्वर ने कोई भी पशु पक्षी को खाने के लिए लोगों को वंचित नहीं किया है, मनुष्य पशु पक्षी के खाने से अशुद्ध नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस के 7वें अध्याय में कहा कि जो मन में से निकलता है, अर्थात बुरी बुरी भावना, विचार, कुविचार, झूठ, निंदा, लालच, वो सारी चीजें, वो सारी बातें जो मरकुस का 7 अध्याय आप 21 पद से पढ़ेंगे, 20 पद से, तो जो मन में से निकलता है वो मनुष्य को शुद्ध करता है, लेकिन जो मन जो पेट में जाता है वो मनुष्य को शुद्ध नहीं करता। खाने के द्वारा हम किसी की शुद्धता और अशुद्धता को नहीं कह सकते। हाँ, हम किसी को बाध नहीं करते, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते। मनुष्य का अपना अपना चुनाव है खाने का, वो किस क्या चीज खाता है, क्या चीज नहीं खाता, लेकिन उसके खाने पीने द्वारा धार्मिकता आध्यात्मिकता निर्णय नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने सारी वस्तुओं को बाद में खाने के लिए ठहरा दिया है। तीमोथियुस में भी इस बात को पाते, तीमोथियुस के 4 अध्याय में। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, 15 पद, फिर दूसरी बार उसे एक आवाज सुना दी, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अपवित्र मत कह। दूसरी आवाज सुनाई दी, फिर आवाज, पहली बार मना करा, दूसरी आवाज, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे अपवित्र मत कह। 16 पद, 3 बार ऐसा ही हुआ तब वस्तु तुरंत आकाश में उठा ली गई। 3 बार हुआ, 3 बार पतरस ने इनकार किया, 3 बार प्रभु यीशु मसीह से इनकार किया उसने, पहले मैं नहीं जानता, 3 बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को कंफर्म किया, यूहन्ना उसके 21वें अध्याय में, 3 बार यहां फिर से हम देख रहे हैं पतरस इस बात को इनकार कर रहा है। परमेश्वर खाने की बात नहीं कर रहा है, तो खाना एक दृष्टांत था, एक चीज उस परमेश्वर को दिखाना समझाना चाहता है। जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसको कोई अशुद्ध नहीं ठहरा सकता। परमेश्वर ने मनुष्य को शुद्ध और अशुद्ध नहीं ठहराया है, केवल पाप ने मनुष्य को शुद्ध और अशुद्ध ठहराया है, पाप ने उसके जीवन को अशुद्ध किया है। 17 पद, परंतु जब इस दुविधा में ही था तो दर्शन में देखा वो क्या होता है, तो देखो कुरनेलियुस द्वारा भेजे गए लोग शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर खड़े हो गए। अब जैसे इसका दर्शन खत्म हुआ कुछ लोग उसके घर पे द्वार पे खड़े हो गए। 18 पर, वे पुकार कर पूछने लगे, शमान जो पतरस कहलाता है क्या यही ठहरा हुआ है, शमान जो पतरस कहलाता है क्या यही ठहरा हुआ है। तो 9 से 16 पद तक हम इसके दर्शन को पाते हैं किस प्रकार से पतरस को प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं। पतरस के समझ से ये परे है दर्शन, वो समझ नहीं पाया है। 3 बार पहले भी यीशु का इनकार किया है, 3 बार प्रेम का स्वीकार किया है, या 3 बार पतरस इस आदेश पतरस का इनकार करता है, लेकिन परमेश्वर किस प्रकार से पतरस को अब तैयार करता है। क्या हुआ, 17 पद से लेकर 23 पद तक तीसरा भाग संदेश वहां का आना, शायद हम यहीं तक देख करके समाप्त करेंगे आज। 17 पद से 23 तक, पतरस जब इस दुविधा में ही था तो देखो दर्शन देख रहा था, पतरस दर्शन पर सोच विचार कर रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तुझे ढूंढ रहे हैं, अब उठ और नीचे जा और निसंकोच उनके साथ चला जा, क्योंकि स्वयं मैंने ही उन्हें भेजा है। पतरस को परमेश्वर ने दर्शन दे दिया, जिसको मैंने शुद्ध ठहराया है तो उसको अशुद्ध मत ठहरा, और जब लोग तेरे पास आए हैं तो तू उनके साथ चला जा। क्यों, पतरस परमेश्वर की दृष्टि में, कुरनेलियुस उसका परिवार एक खोजी है और उसके लिए वो महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सच में अपने खोजने वालों की चिंता करता है, और इसलिए अवश्य है कि हम इस बात को समझ सकें और लोगों की कीमत को जानने पाएं। 21 पद, तब पतरस ने नीचे जाकर उन लोगों से कहा, देखो जिसे तुम ढूंढ रहे हो मैं वही हूँ, तुम क्यों आए हो। उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सुबेदार जो धर्मी है, पहली बात हम पहले देख चुके हैं, परमेश्वर का भय मानता है और सारी यहूदी जाति में सम्मानित है। यहूदी व्यक्ति अन्य जाति है, लेकिन यहूदी जाति भी उसको सम्मान की दृष्टि से देखती है, सम्मानित है। उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने, ये उद्देश्य है, तुझसे वचन सुने। जब खोजा परमेश्वर को चाह रहा था, परमेश्वर ने फिलिपुस को तैयार किया, फिलिपुस को उसके रथ पर भेजा ताकि फिलिपुस जाकर के खोजे को वचन सुनाए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का कार्य, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ लोगों को इस योग्य बनाती है कि वे लोग खोजियों को और जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं उनको परमेश्वर के वचन को पहुंचा सके। मेरे प्रियो, यदि मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जीवन को पाया है, तो सबसे बड़ी मेरे और आपकी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को दूसरों को सुना सकें। गांव में, देहातों में, परिवारों में, मित्रों में, सहयोगी में हम कहीं ना कहीं इसका सुना सकें। और लिखा हुआ है इसलिए उन्होंने निर्देश पाया है, ये पत्रस की जिम्मेदारी थी कि पत्रस जा करके प्रभु यीशु मसीह के वचन को कुरनेलियुस और उसके पूरे परिवार को स्पष्टता के साथ समझाए ताकि कुरनेलियुस प्रभु यीशु मसीह को जाने, विश्वास करे और उसका पूरा घराना उद्धार को प्राप्त कर सके और एक अन्य जाति परिवार भी अब यहूदियों के समान एक हो सके। ध्यान दीजिएगा, पहले यहूदी थे, फिर सामरी थे, अब अन्य जाति है। परमेश्वर सबको एक कर रहा है पवित्र आत्मा और अपने वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा काम केवल अन्य भाषाएं बुलाना नहीं है, वो एक चिन्ह के रूप में होता है, एक वरदान के रूप में होता है, लेकिन आज वो चिन्ह पहाजे का प्रकट नहीं होता, अगली बार हम देखेंगे उसको। लेकिन सबसे बढ़कर कार्य है पवित्र आत्मा का काम सारे विभाजन को दूर करके परमेश्वर के राज में एक करना है और सबसे बढ़कर के परमेश्वर के वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा लोगों को उद्धार में प्रवेश कराना है, लोगों को उसके राज में प्रवेश, ये सब कुछ करना है। और लिखा हुआ है 23 पद में तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर घर में ठहराया। अब उनको भीतर बुलाया, अब पता समझ गया कि परमेश्वर की योजना क्या है, वो जान गया, वो दर्शन किया था, मैं तो मना कर रहा था लेकिन परमेश्वर की योजना है कि मैं जाकर के कुरनेलियुस को जाकर के सुसमाचार सुनाऊं और कुरनेलियुस परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो, इसीलिए पौलुस क्या कहता है, पौलुस तिमोथियुस को लिखते हुए बहुत ही सुंदर रीति से पहला तिमोथियुस उसके 3 अध्याय में इस बात को लिखता है। वो कहता है हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से राजाओं के लिए, शासकों के लिए, पदाधिकारियों के लिए, क्या करें जिससे कि हम चैन और शांति सहित पूर्ण भक्ति तथा गंभीरता के साथ जीवन व्यतीत करें। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में भला और ग्रहण हो, जो ये चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जानें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर तथा मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है अर्थात अपने आप को सबकी फिरौती के दाम में दे दिया और इस साक्षी उच्च समिति की। परमेश्वर चाहता है सबको उद्धार प्राप्त हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर कुरनेलियुस को भी चाहता था कि वो उद्धार प्राप्त करे और उसके द्वारा फिर अन्य जाति के और लोग सुसमाचार को सुन सकें और वे भी विश्वास कर सकें। सो आज अंत में क्या सच में मेरे और आपके अंदर ये इच्छा है कि मेरे और आपके द्वारा अन्य जाति लोग प्रभु में आ सकें। मेरे प्रियो, हमने पत्रस की सेवा के बारे में देखा, परमेश्वर ने पत्रस को इस्तेमाल किया, इस अन्यास के बारे में जो झोले का मार था लकवाताड़ साहब से चंगुआ ताकि परमेश्वर के कार्य के लिए। मेरे और आपको सोचना है परमेश्वर मुझे और आपको आपने चंगाई दी है ताकि हम उसके लिए जीवन व्यतीत कर सकें। तभी तक के लिए हमने देखा जो हिरने के समान, क्या सच में आज हमारी बहनें कलीसिया में है, क्या प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारी कलीसिया में ऐसी बहनों को उत्पन्न करें, ऐसी बहनों को दें, ऐसी बहनों को खड़ा करें जो एक समर्पित हों और सच में दौरकस और तबीता और हरणी के समान गजेली, जैसे मैंने कहा गजेली जिसका कहा गया है, उसके समान भूखी और प्यासी हों और परमेश्वर की खोजियों करके परमेश्वर को महिमा कर सके। काश मैं और आप पत्रस के समान जागृत होकर दर्शन को प्राप्त कर सके और सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके। अब बहुत सारे लोग हमारी कलीसिया में अन्य जाति परिवार से जुड़ जाए, इस कोरोना के समय में भी लोग हमारे संपर्क में आए और हम उनको सुसमाचार सुना सके। बाकी हम आगे वाले संदेश पढ़ेंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे।